नमस्कार भारत, तारीख 17 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूँ वंदना। ग्रीस को मिली फौरी राहत, यूरोजोन 5 अरब पाउंड की तात्कालिक मदद देने पर राजी। अमेरिका में नौसेना के केंद्र के पास गोलीबारी में 4 मरीन्स की मौत, ओबामा ने कहा दिल तोड़ने वाली घटना। मालेगांव धमाकों से जुड़े मामले में सरकारी वकील रह चुकी रोहिणी सालिया ने आखिर क्यों छोड़ा अपना पद?
हमको कोई इंटरफियर करेगा तो वो बहुत पसंद नहीं है, हम लोग किसी का दबाव से आके कुछ काम नहीं करेंगे, इस तरह का दबाव आएगा तो इससे बाहर आना अच्छा है ऐसा लगा मुझे।
होंगी खेल की खबरें भी, पर पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। ग्रीस में एक दिन में सिर्फ 60 यूरो ही बैंक से निकाल पाने की पाबंदी खत्म कर दी गई है और अब ग्रीस के बैंक भी सोमवार से खुल जाएंगे। यूरोजोन के मंत्री ग्रीस को फौरी ज़रूरतों के लिए 7 अरब यूरो का कर्ज देने पर राजी हो गए हैं। इस कर्ज का उद्देश्य बेल आउट पैकेज पर मंजूरी से पहले ग्रीस की अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से बचाना है। उम्मीद है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश शुक्रवार तक इस कर्ज की पुष्टि कर देंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने यूरोजोन के इस कदम का स्वागत किया है। अमेरिका के टेनेसी राज्य में अधिकारियों ने बताया है कि वहां नौसेना के 2 केंद्रों में हुई गोलीबारी में 4 मैरीन की मौत हो गई है। पुलिस ने कहा है कि एक हथियारबंद व्यक्ति को मार दिया गया है। बंदूकधारी को अमरीकी नौसेना रिजर्व सेंटर के पास मार दिया गया। बंदूकधारी का नाम मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज बताया जा रहा है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर गोम्बे में बचाव कर्मियों का कहना है कि बाजार के पास हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 49 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। पहला धमाका एक जूते की दुकान के बाहर हुआ, जबकि उसके तुरंत बाद एक अन्य धमाका हुआ। एक बचाव अधिकारी का कहना था कि मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना का ब्यौरा कुछ इस तरह दिया। हम लोग बाजार में थे, हमने अचानक देखा कि ऊपर एक जहाज उड़ रहा है और फिर वो अचानक गायब हो गया। उसके करीब 5 मिनट बाद ही हमें धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद लोग भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग मारे गए। एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। एक साल पहले आज के ही दिन मलेशियन एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच किसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से कराए जाने की मांग में ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा है कि इस मामले में न्याय अवश्य होना चाहिए। उनकी ये मांग ठीक उस समय हुई है जबकि नीदरलैंड और यूक्रेन में जहाज में सवार यात्रियों की याद में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। MH-17 नाम के जहाज में कुल 298 यात्री सवार थे और सभी लोग मारे गए थे। अमेरिका में 3 साल पहले कोलोराडो के थिएटर में बैटमैन श्रृंखला फिल्म द डार्क नाइट राइजेस के प्रदर्शन के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले जेम्स होम्स को हत्या का दोषी करार दिया गया है। उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। इस गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 70 लोग घायल भी हो गए थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एक आदिवासी छात्रावास में छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और इलाके के विधायक प्रतिनिधि जैसे लोग भी शामिल हैं। इस मामले में स्थानीय अखबारों के 2 पत्रकारों समेत 6 लोग फरार बताए गए हैं। इलाके के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने के मुताबिक इस मामले में छात्रावास की अधीक्षिका और पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बीबीसी समाचार।
कार्यक्रम नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे ग्रीस की, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ग्रीस में आखिरकार सोमवार को बैंक फिर से खुलेंगे, जो आर्थिक संकट के बीच 3 हफ्तों से बंद पड़े थे। दरअसल यूरोजोन के वित्त मंत्री इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो ग्रीस को 5 अरब पाउंड का ब्रिज लोन यानी फौरी राहत देंगे, ताकि ग्रीस तब तक आर्थिक कामकाज चला सके जब तक कि उसे मिलने वाले बेलआउट पैकेज को बाकी देशों की अंतिम मंजूरी नहीं मिल जाती। कल ग्रीस की संसद में तीखी बहस के बाद बेलआउट पैकेज से जुड़ी शर्तों को ग्रीस ने मंजूरी दे दी थी। यूरोजोन का नया फैसला अब उसी के बाद आया है। पूरी जानकारी के साथ हैं समीर आत्मज मिश्र।
यूरोजोन के मंत्री ग्रीस को फौरी जरूरतों के लिए 7 अरब यूरो का कर्ज देने पर राजी हो गए हैं। इस कर्ज का मकसद बेल आउट पैकेज पर मंजूरी से पहले ग्रीस की अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से बचाना है। उम्मीद है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश शुक्रवार तक इस कर्ज की पुष्टि कर देंगे। ग्रीस को दी जाने वाली धनराशि यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलाइजेशन मैकेनिज्म यानी EFSM से दी जाएगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने यूरोजोन के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना था,
I'm happy to say that in the course of this afternoon and you and the ECOFIN found an agreement.
मैं इस बात से खुश हूं कि यूरोजोन ने ग्रीस को अगस्त तक के लिए फंड की व्यवस्था कर दी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम आयोग के प्रस्तावों के अनुरूप किसी समझौते तक पहुँचने में कामयाब रहे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर के शब्द। एक अन्य घटनाक्रम में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ग्रीस के लिए आपात आर्थिक मदद बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि राजधानी एथेंस में सरकार विरोधी प्रदर्शन उसके बाद भी हुए हैं। इस आशय के फैसले तब हुए हैं जब ग्रीस की संसद ने यूरोजोन बेलआउट समझौते के लिए कड़े सुधारों को मंजूरी दे दी है। ग्रीस के बैंक करीब 3 हफ्ते से बंद हैं और अब उम्मीद है कि बैंक सोमवार से खुल जाएंगे। इससे पहले सोमवार को ब्रसेल्स में यूरोजोन के नेता ग्रीस को बेलआउट पैकेज देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए थे। पैकेज पर औपचारिक चर्चा शुरू होने से पहले कई देशों की संसदों को भी इस बारे में अपनी सहमति देनी है। फिनलैंड की संसद ने गुरुवार को अपनी मंजूरी दे दी। फिनलैंड के वित्त मंत्री अलेक्जेंडर स्टब,
ei päätöksenteko ollut vaikeeta. Meillä on ollut alusta saakka hallituksessa.
ये फैसला मुश्किल नहीं था, हम शुरू से ही यूरो के पक्ष में थे। हमारी प्राथमिकता यूरोजोन की स्थिरता बनाए रखने में है और हम इसकी मजबूती को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिनलैंड के वित्त मंत्री अलेक्जेंडर स्टब के शब्द। लेकिन इस सहमति के साथ शर्त ये थी कि ग्रीस की संसद को सेवानिवृत्ति की आयु और करों में बढ़ोतरी संबंधी सुधारों पर बुधवार रात तक मंजूरी की मुहर लगानी थी। संसद ने सुधारों पर मुहर तो लगा दी, लेकिन ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास को अपने ही पार्टी के सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ा है।
तो ग्रीस को फिलहाल कुछ राहत, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। और अब खबर अमरीका से। अमरीका के टेनेसी राज्य में नौसेना के 2 केंद्रों में हुई गोलीबारी में 4 मरीन्स की मौत हो गई है। हमलावर को भी मार दिया गया है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घरेलू आतंकवाद की घटना है या नहीं। पूरा ब्यौरा जुटा कर लाए हैं अमल चौधरी।
अमरीकी राज्य टेनेसी में नौसेना के केंद्र के पास गोलीबारी करने वाले बंदूकधारी का नाम मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज बताया जा रहा है। मीडिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में एक प्रवक्ता ने कहा कि इस नाम का एक छात्र 2012 में पास आउट हुआ है, जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक ये व्यक्ति अमरीकी नागरिक था, जिसका जन्म कुवैत में हुआ था। उन्हें इस साल शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ा गया था। राष्ट्रपति ओबामा ने इस घटना पर दुख जताया है।
It is a heartbreaking circumstance for these individuals.
ये दिल तोड़ने वाला वाकया है। जिन लोगों ने देश की सेवा की वो इस तरह मारे गए हैं। मैं अमरीकी लोगों के बिना पर कहना चाहता हूँ कि प्रभावित परिवारों को हमारा समर्थन रहेगा। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। उधर टेनेसी में अटॉर्नी बिल किलियान ने इस घटना के बारे में कहा कि इसे घरेलू चरमपंथ का मामला मानकर जांच हो रही है। गोलीबारी की घटना अमरीकी नौसेना रिजर्व सेंटर और एक रिक्रूटमेंट ऑफिस में हुई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने CNN को बताया कि उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी और एक गोरे व्यक्ति को देखा जिसके पास राइफल थी और कई बार गोलियां चली। इससे पहले अमरीकी अधिकारियों ने कहा था कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या बंदूकधारी IS या किसी जिहादी गुट से जुड़ा हुआ है या नहीं।
जी, तो अमरीका में टेनेसी में 4 मरीन्स की मौत, और जानकारी जुटा कर लाए थे अमल चौधरी। अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों की। रूस के शहर उफा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बीच दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट देखी गई थी, लेकिन अब फिर से दोनों के बीच जो दोनों देशों की चौकियों पर गोलियां चली हैं उससे फिर तनातनी हो गई है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसने एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि कल विदेश सचिव SJ ने पाकिस्तान के दावों को गलत बताया था। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बात की विदेश मामलों के जानकार जी पार्थसारथी से और उनसे पूछा कि अब वो कैसे देखते हैं दोनों देशों के रिश्तों को।
बात यह है कि पहले जब इस तरह के घटना हुआ करते थे पिछली सरकार वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तो उनका तो निर्णय यही है कि अगर सीमा पार से फायरिंग शुरू हो या घुसपैठ शुरू हो तो जवाबी कार्रवाई सख्त होगा। और मेरी समझ ये है कि पाकिस्तान जो कई सालों से ये करता आ रहा है और भारत का जवाब उतना सख्त नहीं रहा है, बड़ी नम्रता से हम इसे देखते रहे, उससे वो शायद जरा ये हो गए हैं अनसेटल्ड।
विदेश सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो ड्रोन दिखाया गया है, दिख रहा है, वो चाइनीज डिज़ाइन का है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अवेलेबल ऑफ द शेल्फ है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि ये ड्रोन कहाँ से आया होगा फिर?
कौन जाने कहाँ से आया होगा, शायद दूसरे तरफ से आकर मुड़ भी गया होगा, कौन जाने। इस तरफ पाकिस्तान कहते हैं कि बहुत उनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वहाँ जो सीमा पार करते हैं, नियंत्रण रेखा पार करते हैं, शायद वो अपने नॉन स्टेट एक्टर से बात करके पता करें।
उफा में जब दोनों नेता मिले थे तो उस बातचीत को काफी सकारात्मक देखा गया था, और हाल ही का जो घटनाक्रम हुआ है उसका कुछ आगे आने वाली बातचीत पर, जिस तरह से बातचीत होगी वरिष्ठ सचिवों के बीच में, अधिकारियों के बीच में बातचीत होगी, उसका कुछ असर पड़ेगा इस पूरा घटनाक्रम का?
इसमें ज्यादा घबराया नहीं हूँ। देखें, बातचीत होगी अपने जो सीमा सुरक्षा बल है उनके, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ, और दोनों देश के वरिष्ठ सैनिक अधिकारी भी, डीजीएमओ एक दूसरे से मिलेंगे। शायद उनको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि ऐसे ना हो। यह याद हमें रखना चाहिए कि 2004 जनवरी को राष्ट्रपति मुशर्रफ ने हमें आश्वासन दिया कि वो संघर्ष विराम का पालन करेंगे, और जब तक वो शासन में रहे 2007 तक इस तरह की घटना नहीं हुई। तो यानी कि ये हो ना हो उनके हाथ में है। वो हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि जो आश्वासन मुशर्रफ साहब ने दिया था उसको पालन करें। चार साल तो पालन हुआ, तो हमारी तरफ से यही रहेगी कि इस तरह की घटना ना हो। अब क्या कदम उठाएंगे, स्पष्ट कदम, उस पर बहस होना चाहिए।
ये थे जी पार्थसारथी, उनसे बात कर रही थी सुशीला सिंह। तो आइए अब नज़र डाल लेते हैं कि पाकिस्तान के अखबारों में कैसी कवरेज मिल रही है इस मुद्दे को। सीधे चलते हैं इस्लामाबाद वरिष्ठ पत्रकार एहतिशाम उल हक के पास। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल आ रही है आवाज़।
जी, ये बताएं कि पाकिस्तान के अखबार क्या कह रहे हैं, काफ़ी जो एक कभी गर्म कभी सर्द वाला जो माहौल बना हुआ है।
देखिए जी, अभी चंद दिन पहले जो दोनों देशों के प्रधानमंत्री में मुलाकात हुई थी उफा रूस में, उस वक्त भी सारे अखबारात में, बड़े अखबारात में बैलेंस हेडलाइन के साथ हुई थी, लेकिन साथ साथ उसके बाद से फिर अखबारात में क्रिटिसम भी शुरू हो गया था नवाज़ साहब पे कि जॉइंट कम्युनिक जो जारी हुआ था उसमें जो चीज़ें, कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया था, बम्बे धमाकों के हवाले से जिक्र किया गया था, दहशत गर्दी का जिक्र किया गया था, तो पाकिस्तान के कंसर्न कहीं भी नज़र नहीं आए। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि भरपूर कवरेज जो है ना, जिस तरीके से अनमैन्ड ड्रोन अटैक, जो ड्रोन जहाज मार के आया गया है, उसको डिनाई कर रहा है कि जी है ही नहीं है, ऐसी कोई हमारा जहाज नहीं मार के आया गया, पाकिस्तान कैसे जीता है। या फिर सारे अखबार, बड़े बड़े अखबार जो हैं, डॉन, द न्यूज, जंग,
तो काफी कवर किया है इस खबर को,
बहुत ज्यादा कवर किया, और अब भी कंटिन्यूएशन उसका चल रहा है
जी, क्योंकि जो आगे की जो राय है कि क्या अब आगे भी ये बातचीत जारी रहे, मुजाकरात हो, उसको लेके किस तरह की अखबारों में एक जो संपादकीय एडिटोरियल्स भी आते हैं।
देखिए जी, आमतौर पे तो ये सब एडिटोरियल भी, आर्टिकल भी, और एनालिसिस भी जो दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी ये वाकया है, ठीक है, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, लेकिन प्रोसेस बातचीत का जो है जारी रखना चाहिए। और फिर ये खबरें भी हैं कि जी अब बैक चैनल डिप्लोमेसी दोबारा जो है ना उसको रिवाइव किया गया है, तल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से, कश्मीर का अगर मुद्दा है उसको हल करना है, तो लोग ये कहते हैं कि जी ये बातचीत होनी चाहिए, और ये सेक्रेटरी लेवल की बात होगी, फिर एडवाइजर लेवल पे, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे लोग मिलेंगे, बॉर्डर फोर्स आपके जो है वहाँ से, और यहाँ पे रेंजर्स के लोगों से, डीजीएसओ के लेवल पे बातचीत होगी। तो आमतौर पे जो लिखा जा रहा है अखबार में बाकी जगहों पे, ये है कि जी बातचीत जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बातचीत जारी रहेगी तो ये जो तनाव है दोनों मुल्कों के दरमियान ये कम होगा तो फिर हालात ठीक होंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुबह इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं जापान से जुड़ी एक खबर की। जापान की संसद में निचले सदन में सिक्योरिटी बिल को मंजूरी मिलने के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बिल के मुताबिक जापानी सैनिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देश के बाहर जाकर जंग में हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि कई लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की कियो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकेश विलियम से।
जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, शिंजो आबे की सरकार जो है वो समझा नहीं पा रही है सही तरीके से कि क्या मुद्दे हैं, जबकि उन्होंने बोला है कि भाई मुद्दे दो हैं। एक तो ये है कि ये जो यूएस जापान ट्रीटी है, इसमें अभी हाल में जापान में इसके बारे में बातचीत हुई है और दो चीज पे बातचीत हुई है। वो ये कि एक तो है इसमें ग्रे जोन है। ग्रे जोन का मतलब है कि जो एरिया ये यूएस जापान ट्रीटी जो है उसको नहीं अपने घेरे में लेती है, जैसे छोटी मोटी झगड़े जो हो रहे हैं चीन के साथ, तो उसको कैसे सुलझाया जाए, क्या ये छोटी छोटी बातों को लेके अमेरिका को बुलाया जाए और उसमें वो दखल करें, या जापान अपनी सिक्योरिटी अपने आप ही करे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये ग्रे जोन जो है ये बड़ा जरूरी है, इसको सुलझाना जापान ही सुलझाए। जो दूसरी बात है जिसको सीमलेस कहते हैं, जैसे उसमें बाधा ना हो, पुलिस से लेके मैरीटाइम और एसडीएफ जो इनकी फोर्सेस है, एकदम से छोटे मुद्दे को बड़े मुद्दे तक पहुंचा दिया जाए जल्दी से। ये दो समस्याओं को लेके आधुनिकता और जो सिक्योरिटी बिल है उसको पास किया गया है।
तो क्या जापान की जो अभी तक नीति चली आ रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसमें आप बदलाव देख रहे हैं?
बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि एक तो ये कि जापान घबराया हुआ है कि जितना पैसा चीन खर्चा करता है अपने मिलिट्री पे, करीब 2% अपने जीडीपी का, जापान उतना नहीं करता है। और जो जापान की जो आधुनिकता है, मॉडर्नाइजेशन है, वो उतनी नहीं है जितनी की चीन की हो रही है। तो एक और ये घबराहट है कि क्या अमेरिका ऐसी स्थिति में जहाँ पे कोई छोटा सा मुद्दा हो उस पे क्या आएगा और मदद करेगा।
चीन ने भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर।
सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट चीन पे होगा, जो चीन ने कहा है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा बुरा सपना है। उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, ये सब चीजें उनके दिमाग में आ गई है। मेरा ख्याल है इसका क्या नतीजा होगा वो ये कि जो नेगोशिएशन है जापान और चीन के बीच में वो अच्छा हो जाएगा। उसके वजह से हिंदुस्तान को फायदा होगा इससे, क्योंकि अब इनको लगेगा चीन को कि भाई ये जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनको आप दबा नहीं सकते हैं। और अमेरिका के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि वो थोड़े से थक गए हैं लड़ लड़ के चारों तरफ दुनिया में।
प्रोफेसर मुकेश विलियम्स जो जापान की सिक्योरिटी बिल के मायने समझा रहे थे। अब बात कर लेते हैं भारत से जुड़ी एक खबर की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए पिछले 4 सालों से ऐसे 7 बम धमाकों की वारदातों की जांच कर रही है जिन्हें मीडिया में कथित तौर पर सेफ्रन टेरर का नाम भी दिया गया है। इनमें से एक धमाका 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ था। इस केस की सरकारी वकील मुंबई की रोहिणी सालिया थी, जिन्होंने अपने ऊपर दबाव के आरोप लगाए और इस केस से इस्तीफा दे दिया। हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने मुंबई फोन कर रोहिणी सालिया से पूछा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने मुकदमे को बढ़ाने में मदद नहीं की।
2009 में इधर मुंबई एटीएस वाले चार्जशीट डाले थे 12 लोगों के खिलाफ, तो चार्जशीट अभी भी है कोर्ट में, उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन हो चुका था एक्सेप्ट 2 लोग वांटेड, वो लोग मिल नहीं थे। तो इसके लिए ये चालू था इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू था। तो वो स्टेज में 2011 में ये चीज एनआईए किया था, फिर इनका मर्जी है एविडेंस लाना नहीं लाना, तो फिर कुछ अभी तक जो हमारा कोर्ट में कुछ डाले नहीं
ये
लोग।
तो ये फ्रस्ट्रेटिंग है आपके लिए?
मुझे तो सही सलामत एविडेंस आना चाहिए, मतलब जो सच्चाई है अगर एविडेंस मिलेगा तो ये लोग जो डालना उनका कर्तव्य है, मेरा थोड़ी है।
तो आपको क्या लगता है कि जब एनआईए की किसी ऑफिसर ने आपसे कहा है कि गो स्लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो अब एनआईए के सारे केसेस हैं और केस में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उनकी मंशा क्या लगती है कि वो केस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं या उन पर दबाव है?
तो अभी तो इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उनका मन का मुझे मालूम नहीं, जो उनका एजेंडा क्या है मुझे मालूम नहीं। मैं इतना फैक्ट बता सकती हूँ, मेरे पास आके बताया गया था, बस इतना ही बोलती हूँ मैं।
ये जो 7 केसेस NIU को दिए गए हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि एक ही ग्रुप के लोगों ने जो है इन सबको किया है। तो केसेस अब किस स्टेज पर हैं और आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ नतीजा निकल पाएगा?
देखिए, एक केस के बारे में मुझे ज्यादातर कुछ मालूम नहीं, तो कहते हैं ये सैफरन टेररिस्ट, वो हिंदू हो, मुसलमान हो और कोई हो, सब लोग खराब तो नहीं है, ये तो सही नहीं है। जो सच्चाई तो कोर्ट का सामने आना चाहिए, जो जिनको खिलाफ अन्याय हुआ है उनको तो न्याय मिलना चाहिए।
आपको लगता है कि निष्पक्ष तरीके से ये केसेस चलेंगे?
वो मैं नहीं बोल सकती हूँ मेरा कोशिश तो वो था, मगर दूसरों का बारे में मैं कुछ बोल नहीं।
लेकिन जब आप पे दबाव पड़ा और NIA का मतलब सरकार ही हुआ ना, तो कहीं ना कहीं तो शक हो जाता है कि पता नहीं केसेस जो आगे चलेंगे।
हो भी सकता है। अभी तो मैं तो मुंह खोल के बताई, मुझे ऐसा लगा ये बोलना चाहिए, मैं पब्लिक को ये जानकारी मिलना चाहिए, इसके लिए बोली मैं।
आपने अभी आवाज क्यों उठाई?
क्योंकि मुझे अभी तो कंफर्म हो गया एजेंडा अलग है, क्योंकि मेरा सर्विसेस इनको नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं थ्रू आउट ये ट्रायल में इतना सब एप्लीकेशन में एक भी इनका खिलाफ कुछ भी ऑर्डर नहीं हुआ, अभी मैं नहीं चाहिए, इसका मतलब थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा आ रहा है मेरा सर्विसेस इनका तरफ से फेवरेबल नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। हमको कोई इंटरफियर करेगा तो वो बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि हम एकदम विदाउट बायस हम केस चलाना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी बनता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। हम लोग किसी का दबाव से आके कुछ काम नहीं करेंगे, तो इस तरह का दबाव आएगा तो वो फ्रीडम भी नहीं है, फेथ भी नहीं चला, उनका ऊपर भी फेथ चला जाता है, इसके लिए इससे बाहर आना अच्छा है ऐसा लगा मुझे, इसलिए वो बोल के बाहर आई मैं।
मालेगांव बम धमाके मामले में सरकारी वकील रह चुकी रोहिणी सालियां और उनसे बात कर रहे थे जुबैर अहमद। वाद विवाद, जंग, तनातनी, अब इन सब खबरों से हटकर बात कर लेते हैं गीत संगीत की। हालांकि मामला यहां भी विवादित ही है। रंगबती ओडिशा के संबलपुरी लोकगीत पर आधारित एक गाना है। 70 के दशक में बना यह गाना काफ़ी मशहूर हुआ था। अब इस गाने का रीमिक्स आया है जिसे गाया है सोना महापात्रा ने, लेकिन रंगबती के मूल गीतकार और संगीतकार ने रीमिक्स बनाने वालों के खिलाफ कानूनी नोटिस ठोक दिया है। क्या है ये पूरा माजरा, समझा रही हैं सुमरनप्रीत कौर।
गानों का रीमिक्स होना आम बात हो गई है। कुछ रीमिक्स होते हैं जहां पुरानी फिल्मों के गाने उठा के नए तरीके से पेश किए जाते हैं। फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि लोक गीत नए ढंग से पेश किए जाते हैं। मोरनी बाबा ना बोले आदि रात मा मोरनी कटे छोटा छोटा निपुड़ा लाए दो। एक लोक गीत MTV के कार्यक्रम कोक स्टूडियो में आया तो विवाद उठ गए। संबलपुरी है पश्चिमी ओडिशा की भाषा। रंगबती संबलपुरी लोक गीत पर आधारित एक गाना है। मित्र भानु गौतिया, प्रभुदत्त प्रधान और जितेंद्रिया हरिपाल और कृष्णा पटेल ने ये गाना रिकॉर्ड किया था 1970 के दशक में। 70 के दशक में बना ये गाना आज भी ओडिशा के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुनने को जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ है MTV के कार्यक्रम कोक स्टूडियो द्वारा बनाए गए रीमिक्स, जिसे YouTube पे मिले लाखों हिट्स। इसे गाया सोना महापात्रा ने। रंगबती के गीतकार मित्र भानु गौतिया और संगीतकार प्रभुदत्त प्रधान ने इसको बनाने वालों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया, नोटिस भेजा। भुवनेश्वर और संबलपुर में सोना महापात्रा और ऋतुराज मोहंती के खिलाफ पुलिस में 2 मामले दर्ज किए गए। आखिर इतना गुस्सा क्यों, बता रहे हैं इस गाने के गीतकार मित्र भानु गौतिया।
कॉपीराइट परमिशन तो नहीं दिए हैं, भाषा संस्कृति दोनों को चोट लगा है। उसमें एक लाइन है, बीही खंजी कोला सांगर सरिसा, एक तो लाइन है वो गई है, बीही कांदी काला सांगर सरिसा, मतलब बीही कांदी इनका मतलब रो के, तो मीनिंग चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। वार्ड का क्या उनको मीनिंग मालूम नहीं है, रंगवती कभी रंग नहीं होता है या रंग कभी रंगवती नहीं होता है, तो थोड़ा मालूम नहीं है तो रंग रंग बोल के जो आक्षेप किए हैं तो लीगल नोटिस दिया गया है, उनका जवाब ये दिए हैं, वो जवाब को तर्जमा करेंगे वकील और उसके बारे उसके बाद जो केस होना चाहिए वो करेंगे।
इस मामले पर सोना महापात्रा कहती हैं,
मैं वैसे म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, तो मैं इमोशनल पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगी। देर इज अनदर साइड टू मी जो बहुत लॉजिकल भी है और जो कानून भी पहचानता है और जानता है। आई स्पेसिफिकली बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दे शुड इन्वोक अ कॉन्वर्सेशन, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन और डिबेट हेल्दी होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अभी सडनली लोगों को लग रहा है इसमें शायद इनके बड़े पैसे बन रहे हैं तो हम लोग इनके पीछे पड़ते हैं, तो मुझे ये एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑनेस्टली।
जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि किसी गाने को तोड़ मरोड़ कर पेश करोगे तो वो उसकी तौहीन है, वहीं कुछ लोग कहते हैं अगर पुराने गानों को नए तरह से पेश करोगे नई पीढ़ी के लिए बिना उसके अर्थ के साथ छेड़छाड़ किए तो क्या बुरा है।
तो रिमिक्स पर छिड़ी बहस, किसे किसी को पसंद और किसी को नापसंद। और अब बारी हो चुकी है खेल की खबरों की।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। खेल की खबरों में सबसे पहले बात भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज खेले जाने वाले T20 मुकाबले की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दो T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में होगा। पहले T20 मैच में भारतीय प्लेइंग 11 पर पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन बात कर रहे हैं।
देखिए, अब मार्टिन रेडो इंजर्ड है, संजू सैमसन गए हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए T20 में, उन्होंने नाम कमाया है। मनीष पांडे को पिछला मैच मिला, उन्होंने रन बना दिए, वो खेलेंगे। बाकी मुझे लगता है संदीप शर्मा को मैं देखना चाहूंगा, वो वनडे स्पेशलिस्ट है और 3-4 साल से पंजाब की टीम से भी अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनली उन्हें सिलेक्ट किया गया है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो ये नए खिलाड़ियों को देखना ही थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है, और नए खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस फिर भी काफी है, क्योंकि 3-4 साल से अगर आप IPL खेले हो तो दुनिया के सबसे टॉप खिलाड़ियों के खिलाफ आपका दिल खुला होता है। तो मुझे लगता है जो पहले एक बहुत बड़ा स्टेप रहता था डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच में, अब वो नहीं रहा है, तो नए खिलाड़ी जो भी आएंगे वो भी बिल्कुल खुल के परफॉर्मेंस देंगे।
जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने का फायदा भारतीय टीम को वनडे रैंकिंग में हुआ है। भारतीय टीम यहां सीढ़ी चढ़ने में बेशक सफल नहीं रही, लेकिन कठिन चुनौतियों के बीच दूसरे स्थान पर अपना कब्जा जरूर बरकरार रखा। वहीं बांग्लादेश की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के साथ ही लगातार चौथे वनडे सीरीज जीती, इसके साथ ही वो रैंकिंग में 7वें स्थान पर भी पहुंच गई। और वहीं श्रीलंका के खिलाफ अगस्त में शुरू हो रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन 23 जुलाई को दिल्ली में किया जाएगा। खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही,
और अब नजर डाल लेते हैं अखबारों पर। समीर, आज समय थोड़ा कम है, अगर आप संक्षेप में जल्दी से बता पाएं।
जी बिल्कुल वंदना, आज संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले में पाकिस्तान को भारत ने जो चेतावनी दी है उसको लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से जगह दी गई है, कई अखबारों ने उसको लीड खबर बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, नव भारत टाइम्स, सभी अखबार मुझे जो दिख रहे हैं उनकी लीड खबर है। द हिंदू ने मोर्टार के टुकड़े दिखाते हुए कुछ गाँव वालों की तस्वीर भी छापी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड खबर है कि व्हाट्सएप, वाइबर और स्काइप पर लोकल कॉल्स ज़्यादा दिनों तक मुफ्त नहीं रहने वाली हैं, यानी अब इन पर पैसा लगने वाला है। और जैसा कि आपने पहले ही बता दिया मुझे कि समय कम है, तो मैं दो खबरों का जिक्र करना चाहूँगा। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है कि अगर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के रिश्तेदार अगर एक लड़ाई जीत जाते हो, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं
जी,
तो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिले का आधा हिस्सा उनके में आ जाएगा, जिसमें डीएम का रेजिडेंस, रेलवे स्टेशन, सारी चीज़ें हो जाएंगी। करीब 674 करोड़ रुपए का ये मुकदमा है। और दूसरी खबर द हिंदू की है और बड़ी दिलचस्प खबर है, बच्चन MSP फॉर DDs किसान चैनल 6.31 करोड़ रुपीज़, यानी लगभग साढ़े छः करोड़ रुपए प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन को दिए गए हैं, जबकि चैनल का कुल बजट साल भर का 45 करोड़ रुपए है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम था आज। और अब आखिर में नजर डाल लेते हैं विश्व समाचारों पर।
BBC समाचार। ग्रीस में एक दिन में सिर्फ 60 यूरो ही बैंक से निकाल पाने की पाबंदी खत्म कर दी गई है, और अब ग्रीस के बैंक भी सोमवार से खुल जाएंगे। अमेरिका के टेनेसी राज्य में अधिकारियों ने बताया है कि वहां नौसेना के 2 केंद्रों में हुई गोलीबारी में 4 मरीन्स की मौत हो गई है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर गोम्बे में 2 बम धमाकों में कम से कम 49 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। अमरीका में 3 साल पहले कोलोराडो के थिएटर में बैटमैन श्रृंखला फिल्म के प्रदर्शन के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले जेम्स होम्स को हत्या का दोषी करार दिया गया है, उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। बीबीसी समाचार।
तो इसके साथ ही अब नमस्कार भारत में विदा लेने का समय आ चुका है। आज स्टूडियो संभाला था राजेश चौहान ने और bbchindi.com, लेकिन आपके साथ बना रहा। अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद, तब तक वंदना को दीजिए अनुमति।